بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بلي محمد وعلى محمد. قرآن تعالیٰ نے ہمیں دین کی ہدایت نصیب فرمائی ہے، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت محبت ہمارے دلوں میں قرار دی. خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں آخری نبی کی امت میں قرار دیا. اللہ کرم ہے اس نے ہمیں آخری امام کے دور امامت میں اس دنیا میں بھیجا ہے. اللہ کی ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے، تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، بالاخص جن کے لیے مجلس منعقد ہو رہی ہے، آپ کے اور ہمارے تمام مرحومین سب کے درجات کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اسال ثواب کی مجلس ایک خاص فلسفے کے تحت انجام پاتی ہے. ہمارے معاشرے میں معمولاً دین کے لیے جو کام انجام پاتا ہے وہ رسم و رواج کے اندر زیادہ ہوتا ہے، سوچ سمجھ کے نسبتاً کم ہوتا ہے. بہت سارے ہمارے بچوں کو اس بات میں مشکل پیش آتی ہے کہ جب وہ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، تو زیادہ تر بزرگ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے بھی کیا تھا اور ہمارے والدین نے بھی کیا تھا. پچھلی نسلوں تک یہ جواب کافی تھا، پچھلی نسلوں تک بچوں کے ذہن میں سوال نہیں تھا. اس نسل کے لیے جو انسانی معاشروں کے چوراہے میں بیٹھے ہوئے، یہاں سے جو 10,000 کلومیٹر دور آبادیاں بسی ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ ہمارا بچہ بھی جانتا ہے. اگر آج ہم اس کو یہ جواب دیں کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے اجداد نے بھی کیا تھا، یہ جواب کافی نہیں. آپ کے پاس اس کی لاجک ہونی چاہیے، آپ کے پاس اس کی منطق ہونی چاہیے. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کے بچے، ہمارے بچے، ہمارے دین کو پسند کرنا شروع کریں گے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم جس کام کو انجام دے رہے ہیں اس کو انجام دینے کا صحیح راستہ ہوگا کیا، اگر وہ منطق ہمارے سامنے ہو، وہ فلسفہ ہمارے سامنے ہو. میں یہ سارے ثواب ہی پر رکھ کر آپ کو اس کی مثال عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. اس سارے ثواب سے بھی پہلے میرے ذہن میں آتا ہے کہ ایک اور مثال عرض کر دوں جس کے اوپر سوال شاید کہیں زیادہ ہوں گے. پہلے میں سوال ہی بنا کے عرض کر دیتا ہوں. शायद आपके साथ पेश आया हो कि आपके बच्चों ने कभी ये सवाल किया हो कि हम ये कुर्बानी पे जो जानवर कुर्बान करते हैं, अगर इसकी जगह हम यही पैसा किसी बच्चे की तालीम में दे दें, किसी गरीब की शादी ब्याह में दे दें, तो क्या ये बेहतर नहीं है? मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं आपकी अतराफ में बच्चों ने ये सवाल कभी ना कभी आपसे कर लिया हो कि भाई क्या ये काम बेहतर नहीं है। खुद आपके जहन में भी मुमकिन आ गया हो कि भाई मैं क्या करूंगा, मैं एक जानवर लेकर आऊंगा, वो चंद दिन खड़ा रहेगा, उसके बाद उसे कुर्बान किया जाएगा, उसके बाद उसका गोश्त खाया जाएगा और इतनी बहुतात के साथ खाया जाएगा कि बहुत सारे लोग तो इसी खातिर जिलहज्जा में मर जाते हैं, गोश्त बहुत खा लेते। तो हमारे बच्चे हमसे पूछने लगते हैं कि भाई वैसे भी ये गोश्त ज्यादा खाना जिस्म के लिए फायदेमंद नहीं है, तो ये गोश्त की ये बहुतात हम लगा कर मुख्तलिफ तरीके से खा खा कर इससे अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं, इससे बेहतर नहीं कि ये पैसा हम किसी गरीब को दे दें। अच्छा, अगर आपने उसको सिर्फ ये जवाब दिया कि बेटा इसलिए कर लो कि हम तो कई नस्लों से ही करते आ रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी से अर्ज कर रहा हूं ये जवाब आपके बच्चे के लिए काफी नहीं होगा। माजरत के साथ शायद मेरी और आपकी वफात का इंतजार कर ले कि उस वक्त तक कुर्बान करता रहूंगा, उसके बाद नहीं करेगा, क्योंकि सवाल उसके जहन में छुपा हुआ है, आपको उसके सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो अगर हमसे कोई पूछे तो हम कहेंगे कि हाँ, जो इस वक्त माशरे में हो रहा है, जिस बेफिक्री के साथ हो रहा है, बिना सोचे समझे हो रहा है, उसके मुकाबले में तो फिर गरीब को पैसा देना ही बेहतर लग रहा है, जिस तरह इस वक्त हो रहा है उसके मुकाबले। लेकिन करेक्शन ये नहीं है कि हम कुर्बानी तर्क करें, करेक्शन ये है कि कुर्बानी को सही तरीके से अंजाम दें। भाई गलती हो रही है, एक काम सही तरीके से अंजाम नहीं पा रहा, तो उसकी करेक्शन ये नहीं कि आप करें ही नहीं, उसकी करेक्शन ये कि आप उसे सही तरीके से अंजाम दें। तो अब मिसाल के तौर पर अगर आप कुर्बानी को सही तरीके से अंजाम दें तो कुर्बानी में क्या सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए, चंद जुमले इस पर अर्ज करूंगा और फिर सारे सवाल। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारे हिसाब से तो जो एज कराची हैं, सर्दी है ही, मुझे तो लग रहा है कि आप लोगों के लिए हमसे ज्यादा सर्दी हो गई, मुझे यूं लग रहा है। थोड़ा सा बुलंद आवाज में दुरूद भेजेंगे मोहम्मद। सबसे पहला मामला ये है कि आप कुर्बानी कर क्यों रहे हैं? अगर आपको ये पता हो तो आपको ये समझ में आएगा कि कुर्बानी करते वक्त मुझे क्या करना चाहिए था। इस वक्त क्या होता है? इस वक्त ये होता है कि जब कुर्बानी हो रही होती है तो बहुत सारे लोग, घर वाले, हमसाया, बच्चे, माजरत के साथ तमाशा देखने खड़े होते हैं। मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, माजरत चाहता हूँ। बाद वक़्त तो यहाँ तक होता है कि उसके मरने के बाद बच्चे तालियां भी बजाते। तो मैं अपने जहन से पूछना चाहता हूँ कि सुन्नत इब्राहिमी का कौन सा हिस्सा यहाँ पर है? अजीब बात यह है कि सुन्नत इब्राहिमी में तो छुरी चली भी नहीं थी, इस माना में जिसमें हम सोच रहे, सुन्नत इब्राहिम में चली गर्दन जानवर की गर्दन पे नहीं चली थी, फर्जंद की गर्दन पे चली थी। और वो जो फर्जंद की गर्दन पे छुरी चली होगी तो वो तमाशा बीनी की हालत में चली होगी। अल्लाह जानता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल पे क्या गुजर रही है। अपने आप से पूछिएगा, 1% भी वो एहसास हमारे यहां कुर्बानी करते वक्त होता है? 1% नहीं, कैसी सुन्नत है इब्राहिम की? इसका मतलब है हमने इस अमल से सिर्फ एक जाहिर को लिया हुआ, इसकी सुन्नत में से कुछ नहीं लिया। अच्छा, आप बिल्कुल शुरू अगर वहीं से करूं कि जब इंसान जानवर लेकर आता है उससे लेकर कुर्बानी के दिन तक क्या होता है, तकरीबन गारंटी से अर्ज कर रहा हूं जो कोई शख्स अहले खाना को वहां खड़ा देखे कुर्बानी के साथ, जैसे ही उसको देखेगा पहला सवाल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये एक बाजार है। एक जानवर मंडी में बिक रहा है, एक यहां जानवर के जरिए अपनी शो बेच रहा है। इसमें से कौन सा सुन्नत है इब्राहिमी? अच्छा, जब कोई काम दीन के नाम पे अंजाम पाए और वो इतना नीचे आ जाए तो फिर ये काम नहीं चल पाएगा, फिर ये काम खत्म होना शुरू हो जाता है। तो मिसाल के तौर पर कुछ ही अरसे के अंदर यहाँ इदारे बनना शुरू होंगे जो लोगों से कहेंगे कि भाई आप क्यों सहमत उठा रहे हैं, आप हमें फंड दे दिया करें, हम उससे जानवर कुर्बान कर देंगे और उसका गोश्त मुख्तलिफ जगहों पर पहुंचा देंगे, आप क्यों सहमत कर रहे हैं? दुरुद भेजेगा, फोन कॉल खत्म हो जाएगा। दुरुद भेजेगा मोहम्मद वाले, एक बार फिर दुरुद भेजेगा, तो सुन्नत इब्राहिम में से कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक जानवर बच गया जो कुर्बान हो रहा है। अगली नस्ल आने तक बच्चे अपने आप से सवाल करेंगे इस जहमत की भी क्या जरूरत है, गोश्त खाने में कौन सी कमी है, हर रोज ही खाते हैं। जहां तक दूसरों का मसला है, दूसरों को इस गोश्त को खिलाने का भी कोई ज्यादा फायदा नहीं है, इससे बेहतर है कि वो पढ़ लें, इससे बेहतर है कि वो अपनी मुश्किलात को हल कर लें, तो जाके पैसे दे दो, मामले को ख़त्म करो। कुछ अरसे के अंदर क्या होगा, एक दो नस्ल के अंदर सुन्नत इब्राहिमी का जो जाहिर था। अच्छा, ये शुरू कहाँ से होता है? चलिए, अच्छा मौका हो गया मैं इसको भी अर्ज करता चलूँ ताकि आपके जहन में भी रहेगा। ये शुरू उस जगह से होता है जहाँ पर दीन के नाम पर जो काम अंजाम पाए उसका तकद्दस पामाल हो जाए, शुरू यहां से होता है। बस जैसे ही आप दीन के नाम पर किसी काम को अंजाम देता देखें और देखें उसका तकद्दस पामाल हो रहा है, अब आप समझते हैं अब ये खत्म होने वाला है, नाउज़ुबिल्लाह। अच्छा, आप कहेंगे कि भाई ये कुर्बानी के जानवर में तकद्दस कहाँ पामाल हुआ? ये मेरे बचपने में पामाल होना शुरू हुआ था जब हमने ये देखा था कि कुर्बानी के जानवर पर कॉमेडी शो बने थे। हमने ये जो आप हंस रहे हैं ना, ये उस तबाही की अलामत है कि आप अफसोस की बजाय हंस रहे हैं। ये हमारे साथ हुआ है, हमने अपने तकद्दुसात को अपनी आंखों के सामने पामाल होते देखा। और अब दीन में किसी भी काम में अगर आप तकद्दुसात को पामाल होते देखें, फौरन समझ जाएगा ये जाएगा, ये खत्म होने वाला। तो मिसाल के तौर पर तकद्दस का पामाल होना आप किस तरह से कहेंगे? और किसी काम की मिसाल दे सकते हैं? मैं अभी आपकी खिदमत में एक मिसाल अर्ज करता हूँ, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। शायद आपको याद हो, एक जमाने में हमारे यहाँ नजर नियाज होती थी तो जो लोग चखा करते थे नजर नियाज को, उसके बाद हाथ धोने के लिए क्यारी तक जाते थे। अच्छा, वो क्यों क्यारी तक जाते थे? वॉश बेसिन तो उस जमाने में भी थे। वो ये कहते थे, नहीं, ये जो नजर नियाज जिन हाथों पे लगी है ये थोड़ा मुतबर्रिक है, इसको गटर लाइन में डालना अच्छा नहीं है। तो वो हाथ धुलाने के लिए क्यारी तक ले जाया करते थे। भाई इंसाफन बताइएगा, कुछ बचा है इसमें से? अब तो नजर नियाज 5-star होटल की कुजीन होती है और वो उसी तरह रोड के ऊपर पड़ी होती है जिस तरह से शादी ब्याह के खाने पड़े हो। अच्छा आपकी पिछली नस्ल ये करती थी क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका तकद्दस बमा हुआ। आगे की कहानी आप खुद समझ लें। जी तकद्दस क्यों पामाल हो रहा है? उसकी वजह यह है कि हिकमत जहन से निकल गई, फलसफा जहन से निकल गया। तो मैं आपकी खिदमत में कानून अर्ज कर दूं, जिस दिन आप अपने दीन के काम को बगैर हिकमत बगैर फलसफे के अंजाम देंगे, अगले मरहले में उसका तकद्दस पामाल होगा, उसके अगले मरहले में लोग उसको नुकसानदेह समझेंगे, आखिरी मरहले में आने वाली नस्ल उसको अंजाम देना छोड़ देगी। नाउज़ बिल्लाह ताला। तो आपके लिए और मेरे लिए इंतहाई जरूरी है कि जब भी आप और मैं दीन के नाम पे कोई काम अंजाम दें, सबसे पहले अपने आप से पूछें इस काम की हिकमत क्या है। उसके बाद आप ये तय करें कि इस काम को आपने कैसे अंजाम देना है। अब मैं आपको इस सारे सवाब के सिलसिले में अर्ज करूंगा, चंद जुमला दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये जो इस्तिलाह है ईसाले सवाब, इसका मतलब होता है सवाब को कहीं तक पहुंचा देना। ईसाले सवाब यानी सवाब को पहुंचाना। अच्छा, अब इस मिसाल में मजलिस हो रही है मरहूमीन के लिए, तो ये सवाब कहाँ पहुंचना है? ये सवाब पहुंचना है मरहूमीन तक। सही। तो क्या जो इस मजलिस के मेज़बान हैं या हम हैं या आप हैं, आप में से किसी में यह ताकत है कि मरहूम तक खुद से कुछ पहुंचा दे? नहीं है कि नहीं? उस दुनिया में कहीं पहुंचाना, शायद इस दुनिया में किसी तक पहुंचाने की हमें ताकत नहीं, उस दुनिया में कहां पहुंचाएंगे? तो ये कौन पहुंचाएगा? ये खुदा ने वादा किया है कि तुम यहां पे कोई ऐसा काम करो जिससे सवाब बन जाए। अगर तुमने इस नियत से सवाब बनाया कि फला मरहूम मरहूमीन तक पहुंचे, तो खुदा वादा फरमाता है कि मैं वो सवाब बढ़ा बढ़ा कर उन तक पहुंचा। सही। तो चलिए, ईसाल सवाब में ईसाल का काम आपका नहीं है, वो खुदा ने करना। जब किसी अमल से सवाब बना देना, ये आपके बस में नहीं, ये भी हमारे बस में नहीं। अमल हम कर सकते हैं, सवाब बनाना ना बनाना उसका काम है, ये भी हमारे बस में नहीं है। तो ईसाल भी बस में नहीं है, सवाब बनाना भी हमारे बस में नहीं है। तो हमारे बस में है क्या? हमारे बस में है कि हम वो काम कर लें जिसके ऊपर खुदा ने सवाब का वादा किया है। अगर हमने वो काम कर लिया जिस पर खुदा ने सवाब का वादा किया है, तो खुदा सवाब बनाएगा, खुदा ही सवाब पहुंचाएगा। तो ये दो मरहले उसकी तरफ से अंजाम पाएंगे। अलबत्ता हम वो जो अमल करेंगे वो भी खुदा की दी हुई तौफीक से करेंगे, उसके बगैर तौफीक के तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो हमें एक तौफीक देगा, उसके नतीजे में हम एक अमल अंजाम देंगे, उस अमल से खुदा के हुक्म से सवाब बनेगा। और सवाब क्या होता है? वो उखरवी अजर, दुनिया का नतीजा सवाब नहीं कहलाता, आखरत में जो कुछ नतीजा निकलता है उसको हम सवाब कहते हैं। वो सवाब बनेगा, फिर वो सवाब मरहूम या मरहूमा तक इरसाल होगा, ईसाल होगा खुदा के हुक्म से। तो आपका मेरा काम क्या है? वो अमल अंजाम देना जिस पर खुदा ने सवाब का वादा किया है। अच्छा, अब दुनिया के तमाम वो अमल जिस पर खुदा ने सवाब का वादा किया है, उनकी एक मुश्तरका शर्त है। दुनिया का कोई भी अमल जिस पर खुदा ने सवाब का वादा किया, उन सबकी एक शर्त है, कम से कम एक शर्त। मसलन आप नमाज पढ़ने खड़े हुए हैं, तो उसकी तो शराइत बहुत ज्यादा है। तहारत उसमें शर्त है, गस्प ना होना शर्त है, वक्त के ऊपर होना शर्त है, तरतीब मुआलात शर्त है, बहुत सारी शर्तें नमाज के अंदर। लेकिन एक शर्त ऐसी है जो दुनिया के तमाम ऐसे कामों के अंदर मुश्तरक है जिन पर किसी सवाब का वादा है, और वो शर्त यह है कि वो काम खुलूस से अंजाम, उस काम में खुलूस। अगर खुलूस ना हो तो आप हज कर लें, कोई भी काम कर लें दुनिया का, उसमें कोई फायदा नहीं होगा। तो पहली चीज क्या है? पहली चीज ये कि भाई आपके पास खुलूस हो। अच्छा, अब ये समझ लें कि अगर सवाब को बनाने में उसके अमल अंजाम देने में कोई सख्ती हो तो ये पहली शर्त ही सख्ती के लिए बहुत है कि खुलूस। अब उसकी एक मिसाल मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, आपने भी कई दफा सुनी होगी, और उसके बाद बढ़ते हुए दो चार जुमला एक और मौजू के हवाले से अर्ज करूंगा। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद खुलूस का मामला इतना सख्त है, इतना संगीन है कि मसलन बाज़ वक़्त इंसान कोई अमल 30 साल तक 40 साल तक एक ख़ास नीयत से अंजाम देता है कि भाई ये खुदा के लिए, ये खुदा के लिए। 30-40 साल के बाद उसे अपने अंदर कोई चीज़ एहसास होती है और 30-40 साल के बाद उसको पता चलता है कि यह अमल खुलूस के साथ नहीं था। तो मसलन कल मैं देख रहा था एक बहुत बड़े आलिम हैं ईरान के अंदर, आयतुल्लाह मोहसिन क़राती नाम का, मुफस्सिर कुरान भी हैं, उनके दुरूस पूरी दुनिया में मशहूर हुए हैं और ईरान में तो 40 साल से उनके दुरूस टेलीविज़न पे आते हैं। तो जो बच्चे उनके दर्स देखते थे अब वो बूढ़े हो गए और बहुत तो शहीद हो गए, ये हो गया वो हो गया, वो अभी भी दर्स देते हैं। तो उन्होंने एक वाक़ा सुनाया, उन्होंने वाक़ा सुनाया कहने के इनकलाब से भी पहले यानी 79 से भी पहले वो कहीं दर्स देते थे। वो दर्स जो देते थे वो एक दर्स देते थे बच्चों के लिए जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे थे और एक दर्स देते थे वो हायर स्कूल के लिए और कॉलेज के बच्चों के लिए। तो वो जो दूसरा दर्स था उसमें सारे बच्चे बड़े होते थे, जवान होते थे। जो पहला वाला था उसके अंदर सारे बच्चे होते थे, क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 के बच्चे। तो कहने लगे कि मैं जब दर्स देखे निकलता था तो बाद वक़्त ऐसा होता था कि उसके बाद मुझे मस्जिद जाना होता था। तो कभी वो दर्स ख़त्म होता था जो जवानों का होता था और मस्जिद जाना होता था, तो वो जवान मेरे पीछे पीछे चलते हुए मस्जिद तक जाते थे। और कभी वो दर्स ख़त्म होता था जो बच्चों का होता था, तो वो बच्चे मेरे साथ पीछे निकल के चलना शुरू हो जाते थे। अच्छा आप ज़रा तसव्वुर कीजिएगा कि एक आलिम है, उसके पीछे क्लास 2 क्लास 3 के बच्चे, कोई इधर घूम रहा है कोई उधर घूम रहा है, वो सब चलते हुए जा रहे हैं। तो कहने लगे कि मैं फील करता था कि भाई ये सीन कोई बहुत अच्छा सीन नहीं है, लोग पता नहीं क्या सोचेंगे क्या देखेंगे। तो कहने लगे जब वो बच्चे छोटे वाले मेरे साथ चलने लगते थे तो मैं उनसे कहता था कि बेटा तुम लोग आगे आगे चले जाओ मस्जिद में, मैं आपने आ रहा हूँ पीछे से। तो नहीं जाते थे, कहते नहीं आ सामने आपके साथ चलना। तो कहने कोई इधर उछल रहा है कोई इधर कूद रहा है और वो मेरे पीछे पीछे चलते थे। अब बाजार में गुजरता था तो एक तमाशा लगने लगता था। तो कहने के इसी तरह मैं एक दफ़ा बाजार में से गुजरता हुआ शर्माता हुआ जा रहा था कि क्या तूफान मेरे साथ चल रहा है। तो एक कहने के एक बूढ़ा आदमी था, वो आलू प्याज बेचता था, 90 साल से ज़्यादा उम्र थी उसकी, 90 साल से ज़्यादा उम्र। कहने का वो बिल्कुल जाहिल लठ आदमी था, उसने मुझे देख लिया। कहने का वो दुकान से मेरे सामने निकल कर आया और उसने कहा कि मोहसिन अगर तुम्हें बच्चों के साथ चलने में शर्मिंदगी लग रही है ना, इसका मतलब है तुम्हारा काम खुदा के लिए है ही नहीं, ये तुम्हारा काम खुदा के लिए है ही नहीं। अगर खुदा के लिए था तो जवान चले या बच्चे तुम्हें भी क्या फर्क पड़ रहा है, तुम क्यों घबरा रहे हो। अब मुझे बताइए अगर इस स्केल के ऊपर हमारा काम जज हो, हमारे पल्ले बचा क्या है फिर, क्यों हमारी तो हर काम के पीछे कंसिडरेशन है, हमारे तो हर काम के पीछे कंसिडरेशन ये है कि दूसरे देखेंगे तो क्या होगा। तो एक एक पीस के अंदर जो हम दीन के नाम पे अंजाम देते हैं, तवज्जो असली शायद इसी पे होती है, लोगों का क्या होगा। अगर आपको और मुझे दीन के नाम पे कोई काम अंजाम देना है और वो चाहते हैं कि अगली नस्लों तक भी चले, तो सबसे पहला काम जिसके ऊपर बेपनाह तवज्जो दीजिएगा और आज की दुनिया के अंदर सबसे मुश्किल काम वो क्या है, वो ये कि आप इसमें खुलूस डालें। बस पहला काम आप इस तरीके से करते हैं और वो पढ़ने वाले से लेकर मुंतजमीन तक और सुनने वालों तक सबकी जिम्मेदारी में पहली जिम्मेदारी ये बनती है। अगर आपने ये कर लिया आपका छोटा सा अमल भी आपको आसमान पे पहुंचा सकता है। और खुदा ना करे नऔज़ु बिल्लाह ताला अगर ये नहीं हुआ तो फिर मैं आपको गारंटी से अर्ज कर रहा हूं कि आप पूरे पूरे स्टेडियम के बराबर भर के आबादी बुलाकर मजलिसें करते रहें, इससे सवाब इजाद नहीं होने वाला। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद ये मजलिस इसारे सवाब और इसारे सवाब की शराइत मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की। अब दूसरी बात जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूँ वो इसारे सवाब से मुलहक एक और फलसफा है, एक और हिकमत है, वो मुझे आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद जैसे हम कहते हैं कि हमने किसी मरहूम या मरहूमा के इशारे सवाब के लिए मजलिस करनी है तो यूं तो हम ये कह रहे होते हैं कि वो जा चुके दुनिया में नहीं है, जब बाद वक़्त हम ये भी कहते हैं कि मर गए। पहले हमारे पास बहुत अच्छा लफ्ज़ था इंतकाल कर गए, वो मरने से बहुत अच्छा था, फौत भी बुरा नहीं था, फौत भी बुरा नहीं था, मरना शायद सही नहीं है। लेकिन मैं भी कहता हूं, मैं भी कहता हूं, माशा कह रहा है, मैं भी कह देता हूं मरना शायद सही नहीं है। क्यों? अगर मरने का मतलब इंतकाल नहीं है, इंतकाल का क्या मतलब होता है? यहां से मुंतकिल होना कहीं और। फौत का क्या मतलब होता है? फौत का मतलब होता है किसी काम का वक्त निकल जाना। फौत, फौत का मतलब क्या है? दुनिया में काम करने का वक्त निकल गया, खत्म, अब कहीं और। मरने का मतलब क्या है? मतलब डेड, खत्म। अच्छा, अगर जिनके लिए मजलिस हो रही है नाउज बिल्ला वो खत्म है तो मजलिस हो क्यों रही है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उनका वजूद अभी है या नहीं है? अगर नहीं है तो हम मजलिस क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है वजूद है उनका, तो वो मरने का मतलब क्या हुआ? मरने का मतलब दर हकीकत वो इंतकाल हुआ। मरने का मतलब हमें लेना पड़ेगा कि इंतकाल हो चुका है, एक्चुअली यहां से कहीं और चले गए। मरने का मतलब हम ये नहीं ले सकते कि खत्म हो गया, खत्म हो गया, मामला खत्म हो गया। नहीं, मामला खत्म नहीं हुआ है, असल में यहां से जाने के बाद तो मामला शुरू होता है, असल में तो मामला वहां शुरू होता है। कुरान करीम ने इंतहाई खूबसूरत एक आयत करीम में फरमाया इन दारल आखिरता लहियल हयवान, असली जिंदगी तो आखिरत ही की जिंदगी है। ये जो असली जिंदगी है वो आखिरत ही की, ये क्या है? ये तो वो मजेदार काम ही नहीं है, ये तो वो मजा ही नहीं है जिंदगी का। क्यों? यहां हर मजे के साथ एक दुख है, यहां जिंदगी में हर मजे के साथ एक दुख है। खाना बहुत अच्छा खाओ, इसके पीछे एक दुख है, औलाद हो तब भी दुख है, हर मजे के पीछे एक दुख है, असली जिंदगी वहां पर है। तो फर्ज क्या है? फर्ज यह है कि जो भी मजलिस हम कर रहे हैं वो जिन लोगों के लिए कर रहे हैं वो जिंदा हैं, वो जिंदा हैं, उनको हमारे इस अमल से कोई नतीजा मिलने वाला है, उसकी खातिर हम ये कर रहे हैं। तो आपका और हमारा इस दुनिया और उस दुनिया के राबते के बारे में क्या नजरिया है? उनके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ये मेहनत हमने अपने लिए क्यों नहीं कर ली? जो लोग यहां तशरीफ फरमा है क्या इनमें से कोई एक आदमी मुझे एक गारंटी दे सकता है कि आज रात तक जिंदा रहेगा? किसी भी एज का हो कोई भी ये गारंटी दे सकता है कि आज रात तक जिंदा रहेगा? आज रात तो क्या दो घंटे की नहीं दे सकते, रात तो दूर की बात है। तो जितनी आप फिक्रमंद हैं उस दुनिया में बसने वाले लोगों के लिए कि उनके लिए कुछ करें, उतने आप फिक्रमंद अपने लिए क्यों नहीं है कि अपनी आखिरत के लिए कुछ करें? उसके लिए भी तो सोचो। अच्छा, हमने क्या सोचा है? हमने सोचा है जब तक हम यहां रहेंगे हम अपनी दुनिया को और करेंगे और जब हम दुनिया से चले जाएंगे तो जो दुनिया में रह गए वो हमारी आखिरत के लिए गौर करेंगे। ये नहीं होने वाला, ये हमने करना है। तो जितना हम किसी के जाने के बाद उसकी आखिरत के लिए फिक्रमंद रहते हैं, उससे ज्यादा हमें इस दुनिया में रहते हुए अपनी आखिरत के लिए फिक्रमंद होना था कि भाई वहां पे होगा क्या हमारा। अगर हम ये कर रहे होते, हम कुछ और होते, हमारे तौर तरीके कुछ और होते, हमारे रस्म रिवाज कुछ और हो जाते। अच्छा, अब क्या करना होगा? मौला का एक फरमान है, अगर मुझसे कोई पूछे ना, मिसाल के तौर पर मुझे तालिब इल्म बने हुए तकरीबन 38 साल में आखिर में हो रहे हैं शायद, तो अगर कोई मुझसे पूछे कि इन 38 सालों में कोई चंद कलाम जो तुम्हें बहुत अच्छे लगे हों, तो मुझे एक ये कलाम बहुत अच्छा लगता है, इसमें एक अजीब ताकत है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा, दुरूद भेजेगा, मोहम्मद व आल मोहम्मद। ये फरमान अल्लाह के नबी से ही मंसूब है, मौला अमीर मोमिनीन और बाकी मासूमीन अलैहिस्सलाम से भी मंसूब है, गोया सब ने दोहराया है, सबकी ज़वात मुकद्दसा पर एक बार फिर दुरूद भेजे मोहम्मद व आल मोहम्मद। जब हमारे यहाँ एक बयानात के अंदर एक जुमला इस्तेमाल होता है, उसकी वजह से थोड़ी सी तकलीफ हो गई है, यानी मुश्किल पेश आ गई। मतलब मैं आपसे पूछूं कि आप फानी हैं या बाकी हैं, आप फना होने वाले हैं या बाकी रहने वाले हैं? सही है। तो अब हम लोगों के सामने एक जुमला हमेशा से है, दुनिया फानी है, दुनिया फानी है। सही, वो बात सही है कि दुनिया फानी, ये बताओ खुद फानी हो या बाकी हो? कुछ अपने दुनिया तो फानी है, यानी ये जो प्लैनेट जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, ये गैलेक्सी जिसके अंदर हम हैं, ये मिल्की वे, इन सबको फना होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, साइंस को भी इस बारे में कोई शुबा नहीं है, इसने खत्म होना है, क्योंकि बहरहाल बहुत सारी निशानियां इस बात की कि जो फोर्स कायनात को एक्सपेंड कर रही है, चाहे कई बिलियन ईयर्स के बाद वो फोर्स कभी खत्म हो जाएगी, जिस दिन वो फोर्स खत्म होगी इसके जमा होने में फिर 15 अरब साल नहीं लगेंगे, फिर चंद शायद मिनट्स की कहानी होगी। और ये कुरान करीम में मौजूद है कि इस कायनात को हम इसी तरह लपेट देंगे जैसे हमने इसको फैलाया है। तो अभी यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है ना, ये उसके कॉन्स्टेंट्स को मामूली स्टडी करते रहते हैं, किस स्पीड से एक्सपेंड कर रही है, तो अभी एक्सपेंड भी कर रही है और एक्सपेंशन में एक्सेलरेशन भी है, फैल भी रही है। सही है, लेकिन सबको मालूम है कि जिस फोर्स की वजह से ये फैल रही है वो फोर्स कभी खत्म हो जाएगी, चाहे 2 अरब साल बाद, चाहे 15 अरब साल के बाद, जब वो खत्म होगी तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन बहुत स्पीड से होगा। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप एक पत्थर को एक इलास्टिक से बांध दें, बहुत ताकत के साथ उस पत्थर को फेंकें, तो वो इलास्टिक को स्ट्रेच करता हुआ पत्थर चलता चला जाएगा। सही है, तो मिसाल के तौर पर आपने इतनी ताकत से फेंका कि वो इलास्टिक को 4 मिनट तक स्ट्रेच करता रहा, स्ट्रेच करता रहा, लेकिन जब कोई स्ट्रेचिंग खत्म होगी तो फिर 4 मिनट लगेंगे वापस आने में, फौरन हट जाइएगा, फिर इसको देर नहीं लगेगी। ये कायनात का हशर होना है, साइंस भी साबित करती है ना ये होना। तो वो जो फानी है वो क्या चीज है? ये फानी जिस पे आप बैठे, आप फानी हैं। अगर आप फानी होते तो खालिदीना फिहा किसके लिए था? खालिदीना फिहा कौन है? हमें कहाँ है खालिदीन, या अलहदा मामला है, इंशाल्लाह अच्छी जगह। इमाम ने फरमाया इन्नमा खुलिक्तुम लिल बका ला लिल फना, तुम बका के लिए खल्क हुए हो, फना के लिए खल्क नहीं हुए हो। इन्नमा खुलिक्तुम लिल आखिरा ला लिल दुनिया, तुम आखरत के लिए खल्क हुए हो, दुनिया के लिए खल्क नहीं हुए हो। फखुजू मिन ममरकुम लिमकरकुम, जब आप इस गेट से एंटर हुए तो वहाँ जो पार्किंग का जगह की जगह है वो आपकी बैठने की जगह नहीं थी, आपके बैठने की जगह यहाँ पे थी, तो वो जो आप गुजरे किसी जगह से और वो गुजरने के लिए ही बनी थी, तो इसको कहते हैं ममर, ममर यानी रास्ता, گزرنے کا راستہ، اور مقر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں ٹھہرنا ہوتا ہے. تو اس مثال مجلس کی مثال میں وہ جو پارکنگ کا ایریا آپ کا تھا وہ ممر ہے اور یہ جگہ مقر ہے، ٹھیک ہے. اچھا اگر عام دن ہوتے تو یہ بھی ممر ہوتا، اگر اس گھر کا عام روٹین ہوتا تو یہ مقر نہیں ہوتا بلکہ مقر گھر کے اندر ہوتا. تو یہ چیز جو کبھی ممر ہوتی ہے وہ ممر رہتی ہے، مقر تبدیل ہوتا ہے، کبھی یہ مقر ہوگا کبھی وہ مقر ہوگا کبھی. امام نے فرمایا گزرنے کی جگہ سے وہ اٹھاؤ جو تمہارے رہنے کی جگہ پہ کام آئے. خضو من ممرکم لمقرکم. امام نے اس روایت کے اندر دنیا اور آخرت کا رابطہ بتا دیا. اب اگر تم نے زندگی گزاری ہے ممر کے لیے، خود بھی دھوکے میں پھنس گئے، زندگی بھی غلط جگہ بتا دی. خضو من ممرکم لمقرکم، گزرنے کی جگہ سے اٹھاؤ چیزیں اس جگہ کے لیے جہاں پہ تم نے ٹھہر جانا، رہ جانا. اب ایک بات اور اس میں اضافہ کروں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ علی محمد. تو سادہ لفظوں میں کیا ہوا؟ سادہ لفظوں میں یہ ہوا کہ آپ نے ایک اکنامکس میں ایک ٹرمنالوجی سنی ہوگی، دنیا میں بھی استعمال بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں ہم ویلیو ایڈیشن. ویلیو ایڈیشن، تو آپ ایک را مٹیریل لیتے ہیں، اس را مٹیریل کے اوپر پروسیسنگ کرتے ہیں اور اس میں ویلیو ایڈ کر دیتے ہیں. تو مثال کے طور پر آپ نے، پتہ نہیں یہاں پہ کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے جن کا تعلق ٹیکسٹائل سے ہوگا، وہ ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں، مثلاً کپاس کو دھاگا بنائیں گے، دھاگے سے کپڑا بنائیں گے، اس کے اوپر کلرنگ کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، ویلیو ایڈیشن ہوتی رہے گی. ہر انڈسٹری یہی کام کرتی ہے، را مٹیریل لیتی ہے، ویلیو ایڈ کرتی ہے، بیچتی ہے اس کو. تو امام ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ امام سے کہہ رہے ہیں یہ دنیا را مٹیریل ہے، اس کو ہاتھ میں لے کے نہ بیٹھے رہنا، کیا کرو اس دنیا میں سے. اگر دنیا ہی کے لیے کچھ کیا ہے تو یہ وہ را مٹیریل ہے جو یہیں رہے گا. تو بہت سادہ سی بات بتاؤں، مثلاً میں نے اپنے لیے اس دنیا کے پتھر سیمنٹ لوہے سے ایک گھر بنایا، اپنے لیے بنایا اس دنیا میں رہنے کے لیے، صحیح ہے؟ یہ ممر کے لیے تھا یا مقر کے لیے تھا؟ یہیں رہے گا، یہیں رہے گا. کیوں؟ یہ ممر کے لیے تھا. آج میں نے کھانا کھانے کے لیے بہت ساری چیزیں خریدی ہیں اور وہ کھانا کھا کے میں یہیں رہوں گا، تو یہ ممر کے لیے تھا یا مقر کے لیے تھا؟ یہ ممر، یہ یہیں رہے گا. اب ایک اور مشکل ہے، آپ نے کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ وہ یہاں کا لیکن منتقل ہو جائے وہاں پر، تو یہ آپ طے کیجئے کہ آپ یہ کیسے کریں گے. اس میں ایک بہت بڑی مشکل ہے، ایک بہت بڑی مشکل ہے. مجھے تین چیزیں، تین کیٹیگریز لگتی ہیں اس دنیا کی، اس دنیا کی تین کیٹیگریز لگتی ہیں. میں جلدی سے عرض کروں گا، موسم اور ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ مجالس زیادہ ہی پڑھنی پڑ جائیں. اللہ سب کو محفوظ کرے. درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ وسلم. موت کا ذکر ہم لوگوں کے لیے ایسا ہے جیسے روح فنا ہو گئی. یہ واقعاً بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا، جب میرے اوپر آئے گی تو شاید مشکل مجھے سمجھ میں آئے گی. فی الحال سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم موت سے کیوں ڈریں، واقعاً نہیں سمجھ میں آ رہا. نہیں ڈرنا چاہیے، اس کا ڈرنا فضول ہے میرا خیال. یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں تین طرح کی ہیں، کچھ دنیا کی وہ چیزیں ہیں جو ہم اسی دنیا کے لیے کما رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں. یہ نو پروفٹ نو لاس، کمایا خرچ کر دیا، نو پروفٹ نو لاس. اچھا فرض کیا ہے؟ فرض یہ ہے کہ حلال کمایا، حلال خرچ کیا ہے، تب نو پروفٹ نو لاس. حلال کمایا تھا، حلال خرچ کیا ہے، کوئی کمائی نہیں ہوئی ہے، کوئی خسارہ بھی نہیں ہوا. اچھا نعوذ باللہ تعالی، حرام کمایا تھا، اللہ اکبر، अब कोई कह नहीं मौलाना मैंने कमाया तो हराम था लेकिन खर्च हलाल में किया है, नहीं सर इससे मामला हल नहीं, ये नेट लॉस है। अब उससे मस्जिद भी बना दोगे ना, लॉस में कमी नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी। मैं आपको गारंटी से अर्ज कर रहा हूं, जो भी ये कहेगा ना आपको नाउज बिल्ला ताला हराम कमाओ उसके ऊपर हलाल में लगा देना सही हो जाएगा, देहले कभी सही नहीं होगा। देहला अब राइज करेंसी नहीं है, पहले के जमाने में थी, देहले कभी सही नहीं होगा, कुछ सही नहीं होता है। सारा का सारा इबादत में भी लगा दो तब भी सही नहीं होगा, हराम हराम रहता, वो अपनी नेचर तब्दील नहीं करता। तो अगर हलाल कमाया हलाल में खर्च किया नो प्रॉफिट नो लॉस, हराम कमाया तो नेट लॉस, नेट लॉस, हराम की बात ही नहीं कर रहा। अच्छा हराम हलाल कमाया नाऊज़ बिल्लाह ताला हराम में खर्च हो गया, अल्लाह इसमें दो नुकसान हो गए, एक नुकसान नहीं हुआ है, दो नुकसान, एक तो हलाल कमाई की सख्ती उठानी पड़ी, कमाना आसान है दुनिया में, वो सख्ती उठाई और खर्च कहां पे हो गया हराम। इसका मतलब क्या हुआ, ये खत्म नहीं हुआ है, ये गंदा बन गया है, अब इसका बोझ भी उठाना है। अच्छा कमाई हलाल थी या हराम थी, हलाल थी, क्यों फिर बोझ बना, खर्च हराम था। मसलन वो कह गया कि मतलब मौलाना क्या आप तवक्को कर रहे हैं यहाँ पे लोग नाऊज़ बिल्लाह ताला कोई गलत चीज पी रहे होंगे, नहीं सिर्फ हराम वो नहीं है, मैंने खर्च किया दूसरों को ये दिखाने में कि मेरी शान और शौकत कितनी है, ये हराम खर्चा है। अभी मैं अगर इसके फॉलो अप करूं ना कि अगर कोई खर्चा इसलिए करे कि मैं दूसरों को दिखाऊंगा, इसका फॉलो अप इतना ज्यादा है जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत फॉलो अप। मसलन एक मिसाल साहब, मैंने हलाल कमाया, हलाल कमाया फर्ज हलाल पर, हलाल कमाया फिर एक गाड़ी खरीदी, और उस गाड़ी खरीदने से मेरा मतलब ये था कि जो देखे उसको जरा पता तो चले कि मेरे पास क्या है, सही है। अब मैं रोड पे चल रहा हूं और बहुत सारे लोग मेरी गाड़ी देख रहे हैं और वो ये हसरत कर रहे हैं, यार काश मेरे पास ये होती, सही है। ये जितने लोग हसरत कर रहे हैं ना, ये वो बुराई है जो वहां आगे देखनी है। जितने लोगों ने ये हसरत की है, क्यों, मैं सबब बना, मैं सबब बना। अच्छा इनमें से कुछ लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी कि अगर ये कमाना होगा ना तो किसी की गर्दन तो काटनी पड़ेगी, किसी की जेब काटनी पड़ेगी, इस जुर्म का जिम्मेदार कौन बना, मैं बना। अच्छा मैंने एक घर बनाया, इतना आलीशान बनाया कि जरा लोगों को पता तो चले कि इस गली में किसी का घर है, ओहो बुरी इन्वेस्टमेंट कर दी, बहुत बुरी इन्वेस्टमेंट की, इसका रिटर्न बहुत बुरा है। बदकिस्मती से हम लोग खुशी के साथ करते हैं, फखर से करते हैं, फर्ज क्या था, हलाल कमाया था, लेकिन अपनी बेवकूफी से हलाल कमा कर भी घाटे का सौदा कर दिया, घाटे का सौदा करके बैठ गए। अब तीसरा फर्ज क्या है जो एक्चुअली मतलूब है, वो ये कि मैंने हलाल कमाया, इसको मैंने टर्न किया किसी भी तरीके से उखरवी अजर में, हलाल कमाया और इसको मैंने तब्दील कर दिया उखरवी अजर में, ये इंसान है जो अकलमंद इंसान है, ये बहुत अकलमंद है। आखिर मैं एक रिवायत आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि ये खुदा बाज़ औक़ात हमें क्या दिखाता है किस तरीके से, बड़ी अजीब एक रिवायत मैंने देखी, आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद, सब एक रिवायत मैंने देखी, उसमें कहा कि एक बंदा था उसने बड़ी कमाई की जिंदगी में, आप कहेंगे मैं कमाने वालों के पीछे पड़ गया हूं, लेकिन आखिर मौका महल देखकर भी हम बोलेंगे कुछ ना कुछ, तो वो उसने बड़ी कमाई की जिंदगी के अंदर बहुत कमाया सारा, अच्छा उसमें थोड़ा सा मिक्सिंग भी कर गया, थोड़ा सा हराम हलाल थोड़ा सा बन गया, یہ بھی کر لیا اس نے. اچھا کرنے کے بعد اس نے حسب دستور جب بھی اس سے کسی نے پوچھا کہ تم نے یہ بھائی کی جو اتنا کچھ کیا کس کے لیے کیا, تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اپنی بات کے لیے, اپنی اولاد کے لیے کیا. میں آپ کی خدمت میں صرف اجمالاً عرض کر دوں, اگر آپ دنیا میں بے پناہ کما بھی لیں اور اس کو بعد کی نسل کے لیے چھوڑ کے جائیں, میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, میری نظر میں اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہے. بہت بڑی حماقت ہے. اچھا اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ وہ کرنا ہے جو مولانا نے سکھایا ہے, اپنی زندگی میں اپنی کمائی کو اللہ کی راہ میں لگا کے جاؤ. انہوں نے ہمیں یہ سکھایا. دیکھیے تم کو وصیت نامہ مولانا کیا کیا. بارہ تو وہ بندہ تھا, اس نے کمائی کی, ساری حلال نہیں تھی, شاید موسٹلی حلال ہو لیکن حلال اور حرام کچھ نہ کچھ مکس تھا. بہت ساری کمائی کرنے کے بعد چھوڑ کے مر گیا, چھوڑ کے مر گیا. جب وہ مر گیا تو وہ اٹھا محشر میں, اب اس نے دیکھا کہ اس کو سنبھالا ہوا ہے حساب کتاب کے لیے کہ بھائی تم نے وہ جو حلال کمایا تھا اس کا حساب علیحدہ دو, اور وہ جو حرام کمایا اس کا حساب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, چونکہ اس پہ تو تم نے سزا اٹھانی اٹھانی ہے. اس کو تو خیر بھول جاؤ, اس پہ تو سزا اٹھانی اٹھانی ہے. ابھی تو تم اس کا حساب دو, وہ جو حلال کمایا اس کے ساتھ کیا کیا, باقی تو تمہارا معاملہ خراب ہے, وہ ہمیں پتہ ہے. اچھا جب وہ حساب کتاب کے لیے کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ ابھی میری کہانی لمبی ہو گئی ہے, میں پھنس گیا ہوں, تو وہ دیکھا اس نے کہ اس کی اولاد بڑے مزے سے بغیر حساب کتاب کی جنت میں جا رہی ہے. اس کی اولاد جنت میں جا رہی ہے بغیر حساب کتاب کے. تو اس نے فرشتوں سے کہا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں اور میں کیوں پھنسا ہوں؟ کہ بھائی کمائی تم نے کی تھی, حرام تم نے کمایا تھا, اس لیے تم پھنسے ہوئے ہو. کہا یہ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا یہ بہت عقل مند لوگ تھے. کہا کیا ہوا؟ کہنے کہ جب تم چھوڑ کے گئے نا تو ان کو پتا تھا کہ تم نے اس نے کچھ حلال کمایا کچھ حرام کمایا, انہوں نے سب سے دست بردار ہو کر اس کو اللہ کی راہ میں لگا دیا. یہ بنا حساب جنت میں جا رہے ہیں, اور تم وہ بدبخت ہو جو کمائی کی زحمت بھی اٹھا چکے اور اب یہاں پھنسے ہو. زیادہ کمانے والوں کے ساتھ یہ ہونے والا ہے زیادہ تر. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ, اپنی زندگی میں سارے کام کر کے جاؤ. یہیں لاہور میں ایک صاحب تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کا ارادہ کیا ہے, کئی انڈسٹریز. میں نے کہا آپ کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں اپنی زندگی میں لگا کے جاؤں گا. میں نے کہا کیوں, لاجک کیا ہے؟ کہنے کہ مولانا میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ میں نے جب بھی کوئی بڑی ڈیل کی ہے میں نے معاملہ بچوں کے سپورٹ نہیں کیا, بڑی ڈیل میں نے ساری خود کی ہیں. میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی ڈیل اپنے بچوں کے اوپر چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, میں ڈیل خود کر کے جاؤں گا, ان پہ نہیں چھوڑوں گا. جب میں نے زندگی میں چھوٹی ڈیلز کے لیے ان پہ اعتماد نہیں کیا تو اپنی اخروی زندگی پہ ان پہ اعتماد کیوں کروں گا, میں خود کر کے جاؤں گا اس کو. تو عزیزان محترم, آپ جتنا مرحومین کی آخرت کے لیے پرواہ کر رہے ہیں اس سے زیادہ اپنی آخرت کی ابھی پرواہ کر رہے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی یہ توہم دے رہا ہے کہ تم آسانی سے مر جاؤ تمہارے بچے سنبھال لیں گے, تو یہ توہم ہے, یہ آپ نے سنبھالنا ہے. ایک بات بس آخری اور عرض کر دوں, یہ بھی بہت زیادہ دہراتا ہوں, ساری باتیں دہرائی بھی ہوتی ہیں تقریباً. اس کی وہ بہت بڑی عجیب روایت ہے, وہ یہ کہ ہمارے یہاں ایک اور کام کرتے ہیں ہم لوگ, مجھے کہ میں نے زندگی بھر کمایا اس کے بعد اپنی زندگی میں وصیت نامہ کر گیا کہ جب میں مر جاؤں تو میری ساری دولت اس جگہ دے دینا. یہ اچھا کیا اس نے برا کیا؟ بہت اچھا کیا. بچوں کے لیے نہیں چھوڑ کے گیا, اس نے کہا مولانا میں نے آپ کی بات پہ عمل کر دیا, بچوں کے لیے نہیں چھوڑ کے گیا, بچوں کے لیے بس اتنا رکھا جس سے ان کی زندگی گزرے. اور میں آپ کو گارنٹی سے بچا رہا ہوں, بچوں کو اگر آپ نے مال کے معاملے بہت زیادہ پیمپر کیا آپ کے بچے بعد میں آپ کو برا کہیں گے, کیوں نہ میں ناکارہ بنا دیا, یہ بعد میں کہیں گے. تو اب اگر مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ مولانا میں اپنی ساری جو کوئی بھی کمائی تھی وصیت نامے میں لکھ کے جا رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد اس جگہ پہ لگا دینا, تو میں ڈیل کس کے سپرد کر کے جا رہا ہوں؟ ورثہ کے اوپر. तो इस डील को मैंने खुद क्यों नहीं किया था। अब एक रिवायत सुन लें, आखिरी रिवायत इस सिलसिले की। अल्लाह के नबी को किसी ने खबर दी कि अल्लाह के नबी, एक आदमी था उसके पास बड़ा पैसा था, मान दौलत थी, उसमें गोदाम भरे हुए थे, वो मर गया है और वो ये कह कर गया है कि ये मैंने कमाई बड़ी मुश्किल से की है, इसको मेरे मरने के बाद अल्लाह की राह में देना, लेकिन ये काम अल्लाह के नबी खुद करें, अल्लाह के नबी खुद करें। सही है, तो पैसे की तकसीम कौन करेगा? अल्लाह के नबी। इससे ज्यादा आदलाना तकसीम कोई हो सकती है? इससे ज्यादा अमानतदारी से हो सकती है कोई? नहीं हो सकती। अल्लाह के नबी ने कहा कि ठीक है मैं आता हूं। वो तशरीफ लाए, उन्होंने उस जगह को खुलवाया, वहां पे मुख्तलिफ चीजों के जखीरे थे, मसलन गंदम थी और क्या थी, खुरमा खजूर वगैरह, तो अल्लाह के नबी ने उसे खुलवाया और उसके बाद उसको तकसीम करना शुरू किया, वो सब तकसीम कर दिया। जब सब तकसीम हो गया तो अल्लाह के नबी ने कहा कि देखो ये किसी ने हमें अमानत दी थी कि हम तकसीम करें, क्या तुम लोगों ने सब कुछ तकसीम कर दिया? उन्होंने कहा अल्लाह के नबी हमने उसके काम में से सब कुछ तकसीम कर दिया। अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, मुझे इत्मीनान नहीं है, तुम जाओ और उस जगह की झाड़ू लगाओ ताकि अगर कोई चीज दाना दूना बचा रह गया तो सामने आ जाए। तो उन्होंने जाके झाड़ू लगाई तो खजूर का एक छोटा सा दाना वो निकल के बाहर आया। कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, हमने तो कहा था सब कुछ खत्म हो गया, ये छोटा सा एक दाना पड़ा रह गया। अल्लाह के नबी ने दाना उठाया और कहा कि अगर अपनी जिंदगी में ये दे के जाता तो पूरे से ज्यादा सवाब कमाता। तो अभी मैं मरने के बाद ये कहूं कि मेरा फला कारखाना फला यतीम खाने की खर्चे को पूरा करने के लिए वक्फ किया जाए, जिंदगी में दिया था। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल भी कर दूं, ये भाई इसकी कीमत कम क्यों हो गई? कीमत कम क्यों हुई? वो पूरा गोदाम भरा हुआ, उसका सबका सवाब खजूर की इस एक छोटे से दाने से भी कम हो गया अगर वो अपनी जिंदगी में दे देता छोटा सा दाना। क्यों कम हो गया? क्योंकि इसने उस वक्त अल्लाह को दिया है जब इसके किसी काम का नहीं रहा है। इसका दिल मरते तक जुड़ा हुआ था कि मेरी प्रॉपर्टी कम ना हो, मरते दम तक इसका दिल जुड़ा हुआ था कि ये मेरी प्रॉपर्टी मेरे कंट्रोल से बाहर ना निकल जाए। अल्लाह को भी पता है क्या कर रहा है मेरे साथ। तो इससे हमें एक सबक मिलता है, ये जितनी डेढ़ होशियारियां हम दीन में कर रहे हैं ना, ये नहीं चलेंगी, ये सब नहीं चलने वाली। खुदा को हमारे बारे में बहुत अच्छी तरह पता है। अब आप तसव्वुर करें एक मजलिस करना जिसमें सवाब बने कितना मुश्किल काम है, कितना मुश्किल काम है। अल्लाह इंशाअल्लाह नसीब फरमाएगा इंशाअल्लाह। दुरूद है मुहम्मद व आले मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये अय्याम जिनसे मैं और आप गुजर रहे हैं, ये अय्याम बीबी की शहादत के अय्याम। दो तारीखें हमारे पास हैं, एक तारीख के अय्याम गुजर चुके हैं और दूसरी तारीख के अय्याम आने वाले हैं। तो मजमूई तौर पर यह तय किया गया कि इन 20 दिनों को बीवी की शहादत के उन्वान से मनाया जाए। कायनात में अगर कोई घर बाबरकत हो, कायनात में, कायनात का मतलब सिर्फ हजरत आदम नहीं है, हजरत आदम से पहले भी जो कुछ था और आज का दौर नहीं है बल्कि आज से लेकर क़यामत तक ख़त्म होने तक इस दुनिया के जितना कुछ भी था, इस दुनिया में अगर कोई जगह बाबरकत हो तो मैं आपसे पूछूंगा बीबी सैयदा के दरवाजे से बढ़कर हो सकती? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। बीबी के घर की बरकतें बड़ी अजीब हैं। अच्छा, ये बरकतें हैं क्यों, क्या क्या बरकत है यहां पर? बड़ी अजीब बात है ये। आपने कबूल कर लिया कि एक घर था जिसका साइज बहुत ही छोटा था और आपने ये कबूल कर लिया कि उसकी बरकतें कायनात के वसी तरीन सितारों और सैयारों से ज्यादा थी। कितना साइज हुआ ये नॉब? यकीनन बड़ा है, उस घर के मुकाबले में, जिसकी वो बरकतें थीं कि दुनिया का कोई बड़े से बड़ा प्लेनेट उसकी बरकतों के पाए तक नहीं पहुंच पाएगा, उस घर की बरकतें बढ़ जाती। अच्छा, ये जो अहले बरकत घर था, इसकी बरकतें किस सबब थी? तो आप फौरन हमसे कहिए कि मौलाना पंजतन की बरकतें थी। पंजतन की तो वजूद की एक एक की बरकत इतनी होती है कि वो अपना हाथ रख दे तो खाके शिफा बना देता है। उनमें से एक तन की बरकत इतनी है, एक दिन के लिए खाके शिफा नहीं बनाई है, अबद के लिए खाके शिफा बना दी है, अबद के लिए खाके शिफा। एक एक की बरकत इतनी थी, और उस मोहब्बते में कितने थे? पंजतन थे। अल्लाह, ये जो बाबरकत जगह थी, पंजतन थे, इनमें रहने वालों के साथ दुनिया में क्या हुआ? अब अजीब बात, इनमें से एक एक की बरकत इतनी थी कि जहां जहां खुदा रब था वहां वो रहमत थी, वो रहमतुन लिल आलमीन। एक एक की बरकत इतनी थी कि उन्होंने अगर किसी जगह पे कदम भी रख दिया तो खुदा उसे खाकी शिबा बनाने को तैयार है, इतनी बरकतें थी उनकी। और ये जो पंजतन जिस घर में मुकीम थे, उस घर में रहने वालों के साथ क्या हुआ? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यानी अगर मैं मसाइब के चंद जुमले ही कहूँ तो मुझे समझ में नहीं आता किसी गैर मुसलमान को बताएंगे कैसे कि इस घर में रहने वाले कुछ वो थे जिनके गलों पर छुरियां चली, अल्लाह। और इस घर में रहने वाले कुछ वो थे कि जिनको जहर दिए गए, और फिर मैं एक और जुमला भी अर्ज कर दूं, इस घर में रहने वाले कुछ वो थे जिनको कोड़ों और ताजियानों का निशाना बनाया, अल्लाह। यानी अगर किसी को बताना पड़ जाए, किसी को बताना पड़ जाए कि एक हस्ती ऐसी थी जब वो तशरीफ लाती थी तो अल्लाह के रसूल खड़े हो जाए, कहीं कोई रिवायत हमारे पास नहीं है कि कोई आए और अल्लाह के नबी अपनी मसनत से खड़े हो जाते हों और उनको अपनी मसनत पे बिठाते हों, कहीं कोई रिवायत सिवाय एक बीबी सैयदा ताहिरा के हमारे पास नहीं। अल्लाह के नबी का दस्तूर यही था। अच्छा, अब मुझे किसी गैर मुसलमान को बताना पड़े कि वो जिनके आने पर अल्लाह के नबी खड़े हो जाया करते थे उनको ताजियानों का निशाना बनना, या अल्लाह, या अल्लाह, कैसे बताएं, कैसे बताएं? हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम नबी के चाहने वाले हैं, नबी के मानने वाले हैं, हम सब का अकीदा है कि एक दिन आएगा जब मैदान हश्र होगा, अल्लाह के नबी खड़े होंगे और अल्लाह के नबी की साहिबजादी भी खड़ी होंगी, और मुझे अल्लाह के नबी के सामने ये कहना होगा कि ए अल्लाह के नबी, आपकी साहिबजादी पे ये जुल्म हुआ, अल्लाह, ये अमल कैसे होगा? भाईजान मोहतरम, इतना सख्त है बीबी के मसाइब को पढ़ना, इतना सख्त है, पढ़ते पढ़ते कभी दिल इस पर डरता रहता है कि कहीं बेहतरामी का कोई जुमला ना निकल जाए, कहीं मसाइब को बयान करने में कोई जुमला ऐसा ना निकल जाए कि बेहतरामी हो। लेकिन बाज़ औक़ात मसाइब ऐसे हैं कि छुपाना मुमकिन नहीं होता है, उनको बताना भी पड़ता है। तो मैं मामूलन कोशिश ये करता हूँ कि किसी और की जबान से नकल कर दूँ ताकि मैं इस मुश्किल में ना पढ़ूँ कि मैंने जुमला कहा। तो एक दफा कराची में आयतुल्लाह बहाउद्दीनी मसाइब पढ़ रहे थे, बीबी की शहादत के मसाइब आयतुल्लाह बहाउद्दीनी पढ़ रहे थे, उन्होंने एक जुमला पढ़ा बीबी के मसाइब में, मैं तो लरस के रह गया और मैं बहुत उस पर क्रिया करता रहा। फिर मैं आगा बहाउद्दीनी से एक दफा मिलने गया और मैंने कहा कि आगा, मैं ये जुमला आपके मसाइब में से सुनकर मोमिनीन को सुनाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे इसकी बाकायदा इजाजत दे सकते हैं? उन्होंने कहा कि हाँ, ये जुमला मुस्तनद है और तुम्हें सुनाना हो तो सुना सकते हैं, और अल्लाह शाहिद है अगर मुझे इजाज़त नहीं मिलती ना, मैं खतन नहीं सुनाता ये जुमला। उन्होंने क्या जुमला पढ़ा था? उन्होंने कहा कि जब बीबी को माजरत चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ, ये लोग धक्का देते हुए घर में आए तो बीबी का वजूद मुकद्दस एक दफा दरवाजे और दीवार में पिसा। अच्छा ये वो जुमला है जो हमने सुना हुआ है कि बीबी का वजूद मुकद्दस दरवाजे और दीवार में बिसा। अलबत्ता इसमें तफसील भी है, तफसील क्या है वो तफसील भी बयान करते हैं। वो कहते हैं कि इस दरवाजे के पीछे एक कील भी निकली हुई थी। अच्छा ये जुमला भी सुना हुआ है, ये जुमला भी सुना हुआ है, बड़ा तकलीफ दे लेकिन ये सुना हुआ है। उसके बाद आगा ने जो जुमला पढ़ा हुआ बड़ा अजीब जुमला था, बड़ा ही अजीब जुमला था। कहा वो लईन दाखिल हुए, उनमें से एक लईन ने सैयदा के रोजारे आदस के ऊपर ऐसा मैं जुरात करके आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ। फरमाया कि एक तरफ से इसने तमाचा मारा, दूसरी तरफ से बीबी का रुखसार दीवार से टकराया। तो उन्होंने कहा कि बीवी का वजूद दो दफा पिसा। जब ये एक जुमला हो गया, मुझे एक जुमला आपकी खिदमत में और अर्ज करना है मसाहिब से। और ये जुमला अर्ज करने से पहले वक्त के इमाम की हुजूर माजरत करनी पड़ती है। बाज़ जुमलात ऐसे हैं जो हम लोग तो भाई तारीख में सुनने वाले हैं, हमने देखा थोड़ी है, लेकिन जब हम ये मसाहिब पढ़ रहे होते हैं ना तो इमाम वक्त के सामने मंजर आ रहा होता है, इमाम देख रहे होते हैं। तो हम लोग सुन के जितना रोते हैं, अब सोचो इमाम देख कर कितना रोते होंगे। तो बड़ी इंसान को तकलीफ होती है कि उनके अजदाद तैयबीन और ताहरीन के मसाहिब भी पढ़ने हैं और वक्त के इमाम का दिल छलनी भी होता होगा अपने अजदाद के मसाहिब को सुनकर, खासकर अपनी जद्दा माजदा के मसाहिब को सुनकर। अजी तो एक बहुत बड़े आरिफ हैं ईरान के अंदर, उस्ताद फातिमी निया नाम करके, बड़े आरिफ हैं, बड़ा एहतराम है उनका, वो मसाहिब पढ़ते हैं और बीबी के मसाहिब भी बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। अजी तो उन्होंने अपने मसाहिब के पढ़ने के दौरान एक जुमला कहा। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि भाई मुझे कोई दोस्त ऐसा मिल जाए जो उसने ये मसाहिब उनकी ज़बान से डायरेक्ट सुने हो, तो मुझे दोस्त मिल गए। उन्होंने तस्दीक की कि हमने ये मसाहिब उनकी ज़बान से डायरेक्ट सुने हैं। तो मैंने कहा चलो मैं जुरात करता हूँ। फिर इन्होंने अजीब जुमला कहा, कहा जब ये लोग दाखिल हुए और बीबी के ऊपर हमला किया तो बीबी जानती थी कि मैं अली को नहीं पुकारूंगी, क्योंकि अगर मैंने अली को पुकारा तो अली नबी से सब्र का वादा किए बैठे हैं, अली हमला नहीं करेंगे, वो सब्र पे मजबूर हैं। तो नालू में किसको पुकारा बीबी ने, बीबी ने फरमाया या मेहदी अदरकनी, ऐ मेरी नस्ल के बारहवीं फर्जंद जो आएगा और दुनिया को तब्दील करेगा, ऐ मेहदी मेरी मदद को आओ। उन्होंने बारहवीं नस्ल को पुकारा। अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए पाक परवरदिगार कुरान अहले बैत की शफाअत नसीब फरमा, तमाम मरहूमीन को अहले बैत अतहार की शफाअत नसीब फरमा। ऐ पाक परवरदिगार तुझ वास्ता नबी औलाद नबी का, हमें अपनी ज़िंदगी में दीन पर अमल की सआदत नसीब फरमा, हमारी ज़िंदगी के कलील आमाल को बेहतरीन अजर व सवाब नसीब फरमा। ऐ खुदाया अहले बैत के मसाइब का वास्ता वक्त के इमाम के ज़हूर मुबारक में तअजील फरमा, उनकी नुसरत की सआदत नसीब फरमा, इस राह में शहादत नसीब फरमा।